नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत ने मंगलवार को G20 देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 3S रणनीति, स्मार्ट, सस्टेनेबल और सर्व अपनाने का आह्वान किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां G20 के कृषि उप प्रमुखों की पहली बैठक से इतर मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत के लिए कृषि हमेशा प्राथमिकता रही है और दुनिया के सामने ये बात अब पूरी तरह सामने आ गई है। सिंधिया ने कहा, हमारी सोच ये है कि हमें विश्व खाद्य प्रणाली पर अपनी छाप छोड़ने के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 3S रणनीति अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि 3S रणनीति स्मार्ट और टिकाऊ खेती है, जिससे सभी की सेवा की जानी चाहिए। स्मार्ट कृषि के लिए सिंधिया ने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए ड्रोन और अन्य नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। टिकाऊ कृषि के लिए किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकियों और विपणन पर ध्यान देने के अलावा अधिक उपज प्राप्त करने, बेहतर कृषि आदानों का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। सिंधिया ने कहा कि भारत ने कृषि में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश में ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का पहला संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में लगाया जाएगा। इस पर कुल 430 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पर्यावरण अनुकूल समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएगी। कंपनी ने इस संबंध में पुणे नगर निगम के साथ 30 साल का दीर्घकालीन समझौता किया है। TGBL के चेयरमैन और संस्थापक प्रतीक कनाकिया ने PTI भाषा से कहा कि ये संयंत्र अगले साल तक 350 टन ठोस कचरे का प्रतिदिन निपटान करेगा। उन्होंने कहा, हमारी 350 टन ठोस अपशिष्ट से 10 टन हाइड्रोजन प्रतिदिन उत्पादित करने की योजना है। हम हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट में संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। देश में ठोस कचरे से हाइड्रोजन प्राप्त करने का ये पहला प्रयास है। कनाकिया ने कहा कि कंपनी संयंत्र स्थापित करने में 350 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके अलावा 42 करोड़ रुपए भंडारण सुविधा तथा लॉजिस्टिक जरूरतों पर खर्च किए जाएंगे। भारत को अगले दो दशक में लगभग 2,210 नए विमानों की जरूरत पड़ेगी। बोइंग ने मंगलवार को कहा कि इनमें से 1,983 विमान एकल गलियारे वाले विमान होंगे। बोइंग का अनुमान है कि देश में 2041 तक सालाना आधार पर घरेलू हवाई यातायात 7% की दर से बढ़ेगा। भारत के लिए अपने 2022 वाणिज्य बाजार परिदृश्य का अनावरण करते हुए बोइंग ने कहा कि देश का हवाई यातायात पुनरुद्धार से वृद्धि की राह पर है। इसमें घरेलू हवाई यातायात का बड़ा योगदान है, जो महामारी पूर्व के 98% पर पहुंच चुका है। घरेलू बाजार में इस दशक के अंत तक दोगुना जाएगा। बोइंग ने बयान में कहा, भारतीय एयरलाइन कंपनियों में 2023 की पहली छमाही में आपूर्ति में 7% की और वृद्धि होगी। घरेलू मार्गों पर तेज वृद्धि के चलते बोइंग का अनुमान है कि देश में 90% नए विमानों की आपूर्ति छोटे एकल गलियारे वाले विमानों की होगी। शेयर बाजार नियामक सेबी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वो नियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान के लिए अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के साथ साथ रिपोर्ट जारी होने के तुरंत पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की जाँच कर रहा है। सेबी ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास अनवरत कारोबार सुनिश्चित करने और शेयर बाजार में अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत ढांचा है। सेबी ने दावा किया कि विकसित प्रतिभूति बाजार दुनिया भर में शॉर्ट सेलिंग को वैध निवेश गतिविधि के रूप में मानते हैं। सेबी ने अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बाद दर्ज दो जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि वो सेबी नियमों, शॉर्ट सेलिंग के नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए हिंडनबर्ग के आरोपों और रिपोर्ट जारी होने से ठीक पहले और ठीक बाद की बाजार की गतिविधि दोनों की जाँच कर रहा है। PTC इंडिया ने चालू वित्त वर्ष की तीसरे तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ के तहत 66% वृद्धि के साथ 104 करोड़ रुपए अर्जित किए। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी को 62.91 करोड़ रुपए लाभ हुआ था। कंपनी की चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में कुल आय घटकर 3,146.91 करोड़ रुपए रह गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 3,338.40 करोड़ रुपए थी। अडानी समूह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने और निवेशकों व प्रवर्तकों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से अपनी कुछ कंपनियों के हिसाब किताब की स्वतंत्र जांच कराने के लिए लेखाकार फ्रंट ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। सूत्रों ने बताया कि ऑडिट में शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक जैसे नियामकों को ये प्रदर्शित करने के लिए है कि समूह ने कुछ नहीं छिपाया है और उसने सभी संबंध नियमों का पालन किया है। ऑडिट में विशेष रूप से ये देखा जाएगा कि कोष में कोई अनियमितता है और क्या ऋण का उपयोग उसके अलावा किसी और उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ये लिया गया हो। सूत्रों ने बताया कि ऑडिट इसकी पूरी जांच करेगा कि खातों में कोई गड़बड़ी नहीं है और परियोजनाएं सही दिशा में हैं जिसके बारे में निवेशक जानना चाहते हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों हेतु ITR भरने के लिए फॉर्म को अधिसूचित किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी की तारीख वाली एक अधिसूचना के माध्यम से ITR फॉर्म 1-6, ITR V और ITR पावती प्रपत्र को अधिसूचित किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।